कल हमने जो लवकुश के युद्ध की कथा सुनाई थी उसके आगे हम सुना रहे हैं,
आगे हम सुना रहे हैं। तो कल तक हमने सुना था कि भगवान राम भरत जी को भेज रहे हैं उन बालकों से युद्ध करने के लिए, और भगवान राम को ये पता नहीं चल रहा है कि वे कौन से बालक हैं जिन्होंने इतना भयंकर युद्ध किया है। तो अब श्री राम की आज्ञा पाकर भरत जी सेना लेकर के चले, वो रथ पर सवार हुए और हनुमान जैसे बानरों को साथ में लेकर के चले। उस समय उनके पीछे मनुष्य और बानरों से भरी पूरी विशाल सेना अयोध्या से बाहर निकली और भरत उस वन में पहुंच करके अब हनुमान जी से बोले। तो भरत जी अब कौन से वन में पहुंचे जहां युद्ध हुआ था, लक्ष्मण भी मूर्छित पड़े हैं, शत्रुघ्न भी मूर्छित पड़े हैं, भरत जी वहां पहुंचे और पूरी सेना भी मरी पड़ी है। तो हनुमान जी से क्या कहते हैं भरत जी, एवं राम समाजितो हनुमन प्रमुख निर्ययो भरतः क्रोधान दश मारुह सत्वरहं निर्गतं बहुलं सैन्यं गगने भूतले राघवस्य पुराम रम्यां नरवानर संकुलं भरतः काननं प्राप्य हनुमन सम्मुभाषः। भरत जी हनुमान जी से क्या कहते हैं, हनुमान संग्राम भूमि में कुछ के बाणों से गिराए गए, किन वीर सैनिकों को तो देखो, इनमें से बहुतों के सिर और भुजाएं कट गई हैं। हनुमान पस्य संग्रामे कुछ बाणे निपातिता रामस्य वीरा बहवो विचिरस्कामि वाहवः गजान नतान हयान वीरान करबांग समर्थकान उधर सामने देखो बहुत से हाथी घोड़े ऊंट और वीर सैनिक मस्तकहीन होकर पृथ्वी पर पड़े हैं, रथ टूट फूट कर बिखर गए हैं एवं घायल प्राणी इधर उधर दौड़ रहे हैं। ना जाने वे दोनों वीर शत्रुघ्न और लक्ष्मण रण क्षेत्र में कहाँ पड़े हैं। तो भरत जी क्या कह रहे हैं हनुमान जी से, लक्ष्मण का और शत्रुघ्न का कुछ पता भी नहीं है कि कहाँ पर गिरे पड़े हैं, यहाँ तो खून की प्रखर धारा महाबली वीरों को बहाए चली जा रही है, इतना खून बह रहा है कि बहुत से वीर तो बह रहे हैं उस नदी में, क्या मेरे दोनों भाई भी इसी खून की धारा में डाल दिए गए, यहाँ बहते हुए मनुष्यों के कहीं हाथ कहीं पैर और कहीं दांत दिखाई दे रहे हैं बहते हुए, किसमें बह रहे हैं, खून में, खून में बह रहे। कुतस्थो पतितो वीरं रणे शत्रुघ्न लक्ष्मणं तोणकेन क्रणीयन्ते बहुलेन महाबलं भागीरथीं प्रतिबलं नीतो किं मम बान्धवः है। कहीं तो घोड़ों के बाल बहते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं मालाएं बहती हुई दिखाई दे रही हैं। अतः अब तुम पहले जैसे सागर को पार करके लंका में पहुंचे थे उसी प्रकार इस खून की नदी को पार कर जाओ और पता लगाओ। क्या पता लगाओ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न कहाँ है, वहाँ पृथ्वी पर पड़े हुए मेरे उन दोनों भाइयों को की खोज करो, साथ ही वे दोनों बालक कुश और लव भी यदि कहीं गिर जाएं तो उन पर भी दृष्टि रखना कि वे क्या करते हैं, बहुत खतरनाक बालक हैं ये। कौन कह रहा है, भरत जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, हनुमान जी से कह रहे हैं। दृष्टन्ते वाहनानां क्वचिन् केशा क्वचिन् त्रजहा नदी में माम समुल्लंघन ब्रज पारम निरीक्षयन् यथागतोऽसि लंकां तम तीर्थो जन निजिम पुरा तत्र कौपस्य पतितं बांधवौ माम कौ भुवि विलोकनीयौ बालौ सुया कुशल वो कुचिन। अब हनुमान जी क्या कहते हैं ध्यान से सुनिए। हनुमान जी कहते हैं भरत जी उस समय मैंने स्वयं सीता जी की कृपा से ही समुद्र को पार किया था क्योंकि पहले वे मेरे अनुकूल थी मतलब प्रसन्न थी क्या अभी हमने सीता जी का अपराध किया है। हनुमान जी कह रहे हैं परंतु आज सीता जी विमुख हैं इसलिए लक्ष्मण के बड़े भाई मैं इस खून की नदी को पार करना भी कठिन मानता हूँ मेरे लिए भी काम कठिन है फिर सीता जी का हमने अपराध किया है इस कारण से तथापि आपकी आज्ञा से उन दोनों भाइयों का पता लगाने के लिए जाऊंगा। तदा तीरण अस्मि भरतं सागरं सीतया स्वयं सम्मुखा साकु राजाता सिंहा विलोक्यते तोरण तौघां नदी मन्ये दुस्तरां लक्ष्मणाग्रज तथापि तव वाक्येन प्रेक्षितुं यामि बांधवान्। यो कहकर हनुमान जी उस नदी को पार करके उस पार जा पहुंचे और वहां उन्होंने रणभूमि में पड़े हुए दोनों भाई शत्रुघ्न और लक्ष्मण को देखा। उनके सारे अंग बाणों से छिन्न भिन्न हो गए थे। वे दोनों मानो सीता के परित्याग से दुखी हुई पृथ्वी से प्रार्थना कर रहे थे वसुंधरे तुम हमारे ऊपर कोप ना करो और सीता से द्रोह करने वाले हम दोनों को भी अपने में स्थान दो। बहुत सुंदर भाव है लक्ष्मण शत्रु में मानो पृथ्वी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे ऊपर गुस्सा ना करो क्योंकि पृथ्वी से सीता जी उत्पन्न हुई तो पृथ्वी की कन्या है सीता जी तो पृथ्वी से प्रार्थना करते हैं लक्ष्मण और शत्रु
ताम नदी तीर्थ पतितांगों रणे शत्रुघ्न लक्ष्मण प्रार्थयन्ता विवेधराम सीता त्यागेन दुखितां मा कोपं व्यजनोत्थानं देहि सीता द्रोहिणीं।
फिर हनुमान उन दोनों मूर्छित भाइयों को अपनी भुजाओं में दाब कर पुनः शीघ्र ही भरत के समीप लौट आए। तो उस पार से शत्रुघ्न और लक्ष्मण को अपने दोनों भुजाओं में दबा करके और उछल करके इस पार आ गए। कौन सी नदी को पार किया खून की हाँ खून की नदी को पार किया।
हनुमान सौ गृह स्वाध बाहोभ्याम पुनरागत भरत समीपम ही मूर्छित सरसान पैन।
भरत ने देखा कि ये दोनों कौन दोनों लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये दोनों उसके बाणों से सर्वथा घायल हो गए हैं। तब उन्होंने आश्चर्यचकित होकर दोनों भाइयों को एक रथ में लिटाया और अंगद को उनकी रक्षा की नियुक्त करके हनुमान से पूछा
भ्रातर विस्मयान्विताम रक्षण चंदम दत्वा हनुमंतम वाच।
अब भरत जी क्या कहते हैं हनुमान श्री राम की सेना का विनाश करने वाले ये दोनों वीर बालक कहाँ चले गए कहीं पता तो लगाओ। मालूम होता है ये दोनों बालक रूप में कोई देवता हैं जो इस महायुद्ध में लक्ष्मण और शत्रुघ्न को धराशायी करके चले गए।
स्वागत हो बालक वीर रामचंद्र निपातको हनुमन पश्य कुत्रापि बाल भेत धरो सुरम गतो लक्ष्मण शत्रुघ्न पाते स्वाम हरणे।
हनुमान जी क्या कहते हैं हनुमान जी कहते हैं हे भरत भरत जी ये लक्ष्मण मेघनाथ के बाणों से भी वैसे मूर्छित नहीं हुए थे जैसे आज कुछ के बाणों से जात हो गए। मेघनाथ ने भी लक्ष्मण जी को बहुत कष्ट पहुंचाया लेकिन इतना ज्यादा घायल नहीं किया था जितना कुछ ने घायल कर दिया लक्ष्मण। अरे मूर्छा तो उन्हें छोड़ती ही नहीं है लक्ष्मण जी को दुखी देखकर तो इस समय मुझे मूर्छा आ रही है। कौन कह रहा है हनुमान जी कह रहे हैं कि मुझे बेहोशी आ रही है लक्ष्मण जी को इतना बेहोश देख करके और सारे सैनिक उन दोनों बालकों द्वारा मारी गई सेना की ओर देख रहे हैं। मेघनादन सरहर नायम मूर्छितो लक्ष्मण तथां यथा कुछ सरहर व्याप्तो न जहाती लक्ष्मण मूर्छना माम पैत्येतां वीक्ष्य लक्ष्मण मातुरम पश्चिम के सैनिका सर्वे बालाभ्याम तम्बलम।
अब इसी बीच में कुछ अपने धनुष की संचार करता हुआ आ पहुंचा, तो कुछ आ गया अपने धनुष की संचार करता हुआ और लव भी ढाल तलवार लिए संग्राम भूमि आ गया।
ये तत्मिन्नंतरे प्राप्त धनुर विस्तारे अंकुश खड़ग कर मैं धरो वीरो लवा संग्राम मागमन।
उधर सूर्यदेव भी अंतर्धान हो गए, मतलब रात हो गई, रात्रि का अंधकार छा गया।
प्रकाश हेत्वा प्रतिदिन करेता गर में खना सूर्योंतरधान मा तेजे ज्ञान संत सुन पद्यत।
उस समय ये वीर अपना है या पराया इसका ज्ञान नहीं रहा। वीर युद्ध कुशल वीर परस्पर एक दूसरे का नाम ले लेकर के पुकारने लगे।
आत्मनश्चा परेशान चाम वीरो न जायते सदाम अन्योन्यम नाम भिस्तेर क्रोशन तीरण को विदाम।
मतवाले हाथी बहुत से रथों को कुचल कर चूर चूर करते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। रथ के वेग पूर्वक ठोकर लगने से घुड़सवार घोड़ों की पीठ से गिरने लगे। अंधेरे में रथ चल रहे हैं, हाथी चल रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। घोड़ों के वेग पूर्वक दौड़ने से घुड़सवार और उनके धक्के से पैदल सैनिक पृथ्वी पर लौटने लगे। इसी समय लव ने अपनी तलवार लप लपाते हुए उस विशाल सेना में प्रवेश किया।
विजामत्ता धावंती सूर्यंतो रथान तथ वेगेना सवीरा पतंती है पृथ्वीतः है वेगेना सवीरा पत्यो अपविशेरते दो धूय खड़गम तलवा
तब कुछ के छोटे भाई लव ने ढाल को सिर पर रखकर खड्ग से शीघ्र ही घोड़ों के पैर और हाथियों के विशाल सूंड़ों को काटना आरंभ कर दिया।
त्रस्याधाय चरमासु खड्गे नास्व पदोच्छिन्नम् हस्ति हस्तान् शालांश्चम् चिच्छेदे संकुशानुजहां।
फिर वे अपने लंबे लंबे हाथों के सहारे से हाथियों के मस्तक पर पहुंचकर उनके कुंभ स्थलों को उसी प्रकार विदीर्ण करने लगा जैसे कुल्हाड़ा लकड़ी को चीर डालता है।
दीर्घ हस्त समालम्य मृगन्न परिहस्तिनम् विदारयति कुंभोता सासानि वै कुठारकाम्।
अब उन फटे हुए कुंभ स्थलों से मुट्ठी भर भर कर गज मुक्ता लेकर पृथ्वी पर फेंकने लगा। हाथियों के मस्तक खड़ते थे तो गज मुक्ता निकलते थे, तो मुट्ठी भर भर के गज मुक्ता जमीन में फेंक रहा है कौन? लव। गज मुक्ता एक विशेष प्रकार का मोती जो पुराने हाथियों के मस्तक पर निकलता है। हाथियों के दांतों पर खड्ग से प्रहार किए जाने पर अत्यंत भयावनी आग की चिंगारियां प्रकट होती थी। दांत से खड़ मारते हैं दांत में, वे सैनिकों को भस्म करने लगी। तब तक महाबाहु कुछ भी कुपित होकर बाणों की वर्षा करने लगा।
फिर जिनके हाथों में धनुष सुशोभित था, जिनकी अंग कांति काले बादलों के समान श्याम थी, उन दोनों बालकों को एक साथ देखकर हनुमान जी बोले, श्री राम जैसी आकृति वाले ये दोनों बालक श्री राम की सेना की ओर देख रहे हैं। अब भरत आदि महाबली जी सावधान होकर खड़े हो जाएं। भरत को देखकर उसने कहा
तुम्हारा शत्रु कुछ और तुम्हारे सामने खड़ा है।
शत्रुघ्नो लक्ष्मण शोभा प्रयाते नेतम बलम किम नाम मे न जानासि शत्रु माम कुसमागतम।
तब भरत ने कहा कुछ मैं तो उस बालक को तेरे छोटे भाई सहित परास्त करके इस युद्ध स्थल से अपनी नगरी को ले जाऊंगा, अन्यथा तो शीघ्र ही घोड़े को छोड़ दे और अब अपने घर को लौट जा। किसने कहा?
भरत जी ने कहा।
स्वाम श्याम अहम योद्धा पराजित्य निजामपुरी सानुजम परिसंभालम घोटम मुंचय प्रजाधुना।
तेरी तपस्विनी माता की ओर ध्यान करके मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो रही है। भरत जी जानते नहीं कि इसकी माता कौन है और ये कौन है। तू अपनी माता से जाकर कहे कि भरत ने भाई साहब तुझे मुझे क्षमा कर दिया। अपनी माता से बोल दे कि भाई साहब मुझे क्षमा कर दिया। भरत जी ने तूने जो मेरी सेना को मार गिराया है तेरे उस अपराध को भी मैंने आज क्षमा कर दिया।
जननी ते तापसी करुणा मिट जाए ते जनन्य ब्रूहि मुक्तोस्मि सबंधुर सबंधुर भरते नचन शामुकम स्वबलस्याद्य पातनम यत्त्वया कृतम।
भरत की वह बात सुनकर कुछ उन्हें बाणों से पीड़ित करने लगा। उसने संग्राम भूमि में वीर भरत को 7 बाण मार दिए और बाणरों को 12 हनुमान जी को 100 बाणों से पीट दिया।
तत्सत्तामचरम तस्य कुशोपाणे रथार्जयन् भरतम तत्तधीरवीरम बाणरान् पञ्चसप्ततिम् हनुमन्तम् सतेनायम् ताडयामास संगरे।
पुनः उस युद्ध में कुपित होकर उसने मुस्कुराते हुए से बाली कुमार अंगद को 1000 बाण मार दिए। अंगद जी को नील को 500 बाण मारे और नल को 70 बाणों से भीन कर जाम बाण को 3000 बाणों से घायल कर दिया। अत्यंत बलपूर्वक छोड़ा हुआ उसका बाण जिस जिसके हृदय में लगा वही सीतानंदन कुश से चालित हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कोई सहन नहीं कर पाया।
बाणानाम बाली पुत्रम च सहस्रेण हसन निवेन नीलम पंचशतैर विद्वा सप्तस्या चानलम रणे जामवंतम त्रिसहस्रेण बाणैर विद्याधरोषितः यस्य यस्य सरोलग्नो नितरां हृदये बलान् मूर्छान्विता कपटिता सीता पुत्रेण ताडिता।
तत्पश्चात महाबली लव ने अभी तो कुछ ने ये काम किया अब लव क्या कर रहा है। उसने 6 बाणों से भरत के धनुष को काट दिया उनके रथ के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और कुछ के धनुष से छूट गए बाणों की चोट से भरत भी मूर्छित हो गए। भरत कुछ नहीं कर पाए।
बाण सद्भिश्च राजेन्द्र लवेनाति बली भरत धनुष छिन्नम ततश्चा सकली कृताम उसको दंड निर्मुक्तैर तुमो है भरता करें।
तब भरत को मूर्छित हुआ देखकर हनुमान ने एक योजन विस्तार वाले एक पर्वत को उखाड़ कर उसी से सीता के दोनों कुमारों के मस्तक पर प्रहार किया। हनुमान ने एक योजन का पर्वत उखाड़ा। एक योजन मतलब 12 किलोमीटर यहाँ से कनाट से 12 किलोमीटर यहाँ से कनाट ले सकता वहां उखाड़ करके दोनों भाइयों के मस्तक पर मार दिया गिराया।
गेम उत्पाट्य हनुमान भरतम नीचे मूर्छितम शिक्षेप सीता सुती और मूर्ण योजन मायतम।
परंतु विशाल नेत्रों वाले उन दोनों भाइयों ने उस पर्वत को आकाश में ही अपने बाणों से काट कर पाउडर के समान चूर चूर कर दिया पाउडर बना दिया उस पहाड़ को। जैसे शंकर जी के शरीर को सुख देने वाली भस्म बन गया वो बिल्कुल महीन पाउडर बन गया वो पहाड़ कि अगर शरीर में लगाए तो बहुत आनंद आए कितना चिकना पाउडर बना दिया उस पहाड़ का।
तम पर्वतम दीर्घ नेत्र बाण चक्रतुरम मरे रुद्र गात्र भूती सुख है प्रथम।
शंकर जी कहेंगे आहा बहुत आनंद आ रहा है इतनी महीन भस्म है बहुत आनंद आ रहा है। तब कुछ ने अपने पुरुषार्थ से सोने के पंख वाले 5 बाण मारकर बानर पुत्र हनुमान को भी घायल और मूर्छित कर दिया।
पंचभिस्तम हरिशतम प्रभिन्नम प्रभिन्नम अपि मूर्छितम हरे कनक चित्र कुशचक्रे सपौरुषाम।
फिर तो सारी सेना में भगदड़ मच गई। तब पुनः दूत ने
श्री राम के पास जाकर
कितने बार आए राम के पास समाचार देने के लिए। पहले तो शत्रुघ्न मूर्छित हुए, राम को समाचार मिला, फिर लक्ष्मण जी को भेजा, फिर लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, राम को समाचार मिला, अब भरत जी को भेजा, फिर राम को समाचार मिला। तीसरी बात, राम के पास जाकर सेना के संघार की बात क्या सुनाई। राजेंद्र ये समाचार सुनकर महाबाहु राम के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे और वे भाइयों के दुख से दुखी होकर सुग्रीव और विभीषण के साथ रथ पर चढ़कर चल पड़े। राम को नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो यज्ञ में दीक्षित हैं, लेकिन अब तो उनको आना ही पड़ा। अब आए, किसके साथ आए? सुग्रीव और विभीषण के साथ आए। उस वन में पहुंचकर उन्होंने उन दोनों बालकों को देखा और अपनी पूरी सेना देखी, जिसके बहुत से वीर मारे गए थे, बहुत से घायल थे और बहुत से नष्ट भ्रष्ट होकर राम राम की पुकार मचा रहे थे। सैनिक लोग तथो भग्नम बलम भूयो रामाय पतितं जनम कथयामास राजेन्द्र श्रुत्वा रामो विनिर्ययम् सुग्रीवो महाबाहुर भ्राति दुखेन दुखितः विभीषणे युता श्रीमान विस्मयोत्फुल्ल लोचना वनम प्राप्य रथारूढ़ सौदन से बलम चतन हत प्रहत विध्वस्तम रामेति परिभाषिताम। तब भगवान राम वीरों में श्रेष्ठ और अपनी जैसी आकृति वाले उन दोनों बालकों से पूछने लगे। राम पूछते हैं बालकों, तुम दोनों को धनुर्वेद की शिक्षा किससे मिली है, जिसके प्रभाव से तुमने मेरी सेना का संहार कर डाला है।
तो प्रत्यय राम बालों स्वाकृति धन विनाम कुतो धीतो धनुर्वेदो भवद्भ्याम यज्ञतम बलम।
किसने विधि पूर्वक तुम्हारा उपनयन संस्कार किया है और किस वेद में तुम लोगों ने परिश्रम किया है तथा किन किन कलाओं में निपुणता प्राप्त की है।
राम कितनी अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं। राम की वाणी कितनी मधुर है।
क्या तुम लोग धर्म चर्चा सुनने में तत्पर रहते हो?
केन ओपनी तो अभिजीवन किंचन वेदे कृत श्रम किंचन कला सुकुशलम धर्म श्रवण तत्पर।
तुम लोग पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि तो नहीं डालते, ब्राह्मणों से प्रतिज्ञा करके उसका पालन तो करते हो ना।
राम पूछ रहे हैं कच्चिन्न परधारेषु विरुद्धा दृष्टि रीयते कच्चिन्ते भूत विद्येषु प्रतिज्ञायाश्च पालनम्।
तुम्हारे पिता का क्या नाम है?
राम पूछ रहे हैं
तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है, ये सब बातें मुझे बताओ। तब श्री राम का कथन सुनकर कृष्ण उत्तर दिया
कस्ता जननी पुत्र मातो निवेदिता कुशो वचनम अब्रवी।
अब कुछ ने कहा, अब ध्यान सुनिए कुछ क्या कहता है। कुछ ने कहा नरेश्वर हमारे वंश संबंधी कथा से तुम्हारा क्या प्रयोजन है।
कुछ कहता है कि अभी तो युद्ध करने का समय है, ये पूछने का समय थोड़ी है, परिचय प्राप्त करने का समय नहीं है।
वंश परंपरा का कथन तो तुम्हारे जैसे लोग ही क्षत्रियोचित पुरुषार्थ का परित्याग करके किया कर रहे हैं। पुरुषार्थ नहीं दिखा रहे हो और ये जो पूछ रहे हो तो ये जो है ना
ये पुरुषार्थ दिखाने का समय है,
देर तक दिखलाओ अपनी। अभी तुम वंश का परिचय क्यों पूछ रहे हो? किमस्मदी ये कथया वंश जो
छात्र पौर से मुत्र जय कसते अर्जुन।
राजेंद्र अब शीघ्र युद्ध करो, विलम्ब क्यों कर रहे हो? या तो कह दो कि घोड़ा हमारा नहीं रहा, या तो कह दो तुम्हारा घोड़ा नहीं है, अथवा युद्ध करो, और कोई दूसरी बात नहीं।
शीघ्र युद्ध राजेंद्र विलम्बाते कथम न तुरंगो यदीय उचिताम बात है युद्धताम। उन दोनों बालकों की बात सुनकर श्री राम ने कहा, लो मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब तुम अपने कुल का वर्णन करो। इति वाक्यम तयो श्रुत्वा रामो वचन विशाम्पते न करिष्याम्यहं युद्धं भवान् कथयताम् कुलम्। तत्पुरुष कहने लगा, राम हम दोनों क्षमाशील भाइयों को केवल सीता ने वन में जन्म दिया है। कितनी देर के बाद पता चला उनके ही पुत्र हैं, और वाल्मीकि मुनि ने हम दोनों के जात कर्म संस्कार किए हैं, उपनयन संस्कार करके वेद एवं सत्पुरुषों के मन को आनंद प्रदान करने वाले श्री राम के चरित्र की शिक्षा भी सम्यक प्रकार से उन्होंने हमें दी है। केवलम सुसवे सीता क्षमाशीलोचनो बने आवयो कृतवान सर्वम जात कर्माधिकम उपनयने च वाल्मीकि वेदम सम्यंग अपाठयन् तथा रामस्य चरितम तन्मनो निर्वृति प्रदम। तन्मनो निर्वृति प्रदम, सत्पुरुषों के मन को आनंद प्रदान करने वाला रामचरित्र की शिक्षा हमें दी है। किसने? वाल्मीकि ने दी है। उस वेद और रामचरित का अभ्यास करने से दृष्टि निर्मल हो जाती है। ये सुनो, ये बड़ी सुंदर ये महिमा है राम के चरित्र की। राम के चरित्र को सुन करके राम को ही पराजित किया जा सकता है। इसलिए शिक्षा मिलती है कि राम को ही बस में किया जा सकता है। तो कितना जो है ना सौभाग्य है रामचरित्र सुनने का। तो वो क्या कहते हैं कि दृष्टि निर्मल हो जाती है, बुद्धि और मन सुस्त रहते हैं। कैसे? रामचरित्र के सुनने से और प्रकाश की वृद्धि होती है। तत्तदम्भ्यास योगेन दृष्टि विमलताम व्रजे बुद्धि स्वास्थ्यम मन स्वास्थ्यम प्रतापाश्चापि वर्धते। उसी के प्रभाव से मैंने तुम्हारे योद्धाओं के सामने सारी सेना का संहार किया। किसके प्रभाव से? तुम्हारे। तो इसी प्रकार वाल्मीकि जी ने भी राम कथा का महात्म्य लिखा है। उत्तरकांड में वाल्मीकि जी कहते हैं, जिसने इस श्लोक में रामायण की कथा सुन ली उसने मानो प्रयाग आदि तीर्थों, गंगा आदि पवित्र नदियों, नैमिषारण्य आदि वनों और कुरुक्षेत्र आदि पुण्य क्षेत्रों की यात्रा पूरी कर ली। प्रयाग आदि तीर्थानी गंगा ज्ञान सरित नैमिषादी अरण्यानी कुरुक्षेत्र आदि कान्यपी गतानि तेन लोकेस्मिन् येन रामायणम् श्रुतम्। जो उत्तम श्रद्धा से संपन्न हो श्री रघुनाथ जी की कथा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होता और विष्णु लोक में जाता है। सम्यंग श्रद्धा समायुक्ता श्रुणते राघवीं कथा सर्व पापांत मुच्येत विष्णु लोकम सगच्छति। तो वाल्मीकि जी के द्वारा जो लिखित रामायण है उसमें लिखा है, जो पूर्व काल में वाल्मीकि द्वारा निर्मित इस आदि काव्य का सदा भक्ति भाव से श्रवण करता है वह भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। आदि काव्यमिदं स्वार्थम पुरा वाल्मीकिना कृतम यह श्रुणोति सदा भक्त्या सगच्छे वैष्णवी तनुम। इसके श्रवण से स्त्री पुत्रों की प्राप्ति होती है, धन और संतति बढ़ती है। इसे पूर्णतः सत्य समझकर मन को वश में रखते हुए इसका श्रवण करना चाहिए। ये परम उत्तम रामायण काव्य गायत्री का स्वरूप है। पुत्र दारा च वर्धन्ते संपदा संतति सत्यमे तन विदित्वा तुम श्रोतव्यम नियतात्मभिम गायत्र्याश्चा स्वरूपम तन रामायणम अनुत्तमम। कितना सुंदर ये जो है कथन है। उसी के प्रभाव से मैंने तुम्हारे योद्धाओं के सामने सारी सेना का संहार किया है। राम तुम में तो पुत्र स्त्री और धन के विषय में ममता ही नहीं है। आप कितने महान हो, आपके अंदर कोई ममता नहीं है, ना तो पुत्र के प्रति है ना स्त्री के प्रति है ना, कोई ममता नहीं। तस्माद हतम बलम सर्वम योद्धानां तपस्यतां ममता नाशिते रामेन पुत्र दारे धने सुचाम। इसी कारण तुम्हारी मारी गई सेना की कोई गणना ही नहीं है। राम क्या अब तुम में शक्ति नहीं है, क्या तुमने उसे वन में ही छोड़ दिया था, तब भला कौन शक्तिहीन पुरुष तेरे भावों से युद्ध कर सकता है, अब तुम क्या युद्ध करोगे। जब तुमने अपनी पत्नी सीता को छोड़ दिया वन में, तो तुम्हारे अंदर शक्ति क्या है युद्ध करने की। कितने निर्भीक है। तस्मादत्त सैन्य गणनाते न विद्यते विद्यते रामेण सात्यक्ता किंतया बने शक्तिहीनो नरा कस्तुम युद्धेते निजतय करें। हम दोनों सीता के पुत्र हैं, उसके कथन से ही श्री राम ने समझ लिया कि ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं, सब हम लोगों के इस युद्ध को धिक्कार है। यूं कहकर उन्होंने अपना धनुष फेंक दिया और फिर भी रथ की बैठक में मूर्छित होकर क्या हुआ, गिर पड़े। राम मन्नत पुत्रो तम सीता तनय कीर्तन भिगस्तु खलु नो युद्धम इत्युक्त्वा धनुर्जहौ पपात रथ निदेत मूर्छितो जनमेजय। फिर मूर्छा दूर होने पर शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले सत्य पराक्रमी धीर वीर धर्मात्मा श्री राम ने सुग्रीव से पूछा, कपि श्रेष्ठ जरा इसका पता तो लगाओ कि दोनों वीर बालक किसके पुत्र हैं। वो तो कह रहे हैं लेकिन तुम और पता लगाओ, तुम बच्चे हैं, बच्चे कुछ कहते हैं तो पूरा पूरा तो विश्वास नहीं होता है, तुम जरा पता लगाओ कि किसके पुत्र हैं ये। वो सामने आए धर्मात्मा धीरा सत्य पराक्रम सुग्रीवं परिपृच्छ रामा पर पुरंजयं एतो कस्यात्मजो वीरो जानी कपि सत्यम। तब सुग्रीव ने कहा, राघव इस विषय में तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये दोनों बालक आप पुराण पुरुष से ही उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि वन के बीच उनमें आपका ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। पुराण पुरुषा जाता देतो मन्य त्रिराघव प्रतिबिंबम तागतम ही वन मध्य विलोक्यते। यद्यपि मैं ये समझ रहा हूँ कि संग्राम भूमि में आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी विजयी नहीं हो सकता, फिर भी मैं आपके सामने ही इन दोनों बालकों से लड़ने के लिए युद्ध स्थल में जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि कोई नहीं जीत पाएगा इनको, लेकिन मैं जा रहा हूँ फिर भी। कौन कह रहा है, सुग्रीव। ना परम संगरे मन जय उत्तम बिना प्रभु तबाग्रे यामी बालो ही विभिधय तुम न। राजन सुग्रीव ने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर उन दोनों बालकों के पर सामने से प्रहार किया, तब उन दोनों ने अत्यंत तीखे बाणों के मार से उस वृक्ष के तिल के समान खंड खंड करके सुग्रीव को ही मूर्छित कर दिया। सुग्रीव जानते थे क्या होना है, वही हुआ। तब तक नील नामक बानर युद्ध करने लगा, तब कुछ ने कुपित होकर नील को एक बाण से घायल कर दिया। गृहीतहासा किनम राजन उमोच पुरतस्तयोम चक्रसुर्मूर्छितम हरि सरयतन नीलो योज्यते वानर नीलम बाणेन दिव्याध कुसा कोप समन्विता। अब नील के शरीर से बहते हुए खून से दूसरे बहुत से नील प्रकट हो गए, फिर तो नील के समान ही आकार प्रकार वाले उन महाबली नीलों ने सारा रण क्षेत्र को व्याप्त कर दिया। ये देखो क्या आश्चर्य है, नील के शरीर से जो खून बहा उससे बहुत से नील और प्रकट हो गए। बभूपुर बहबो नीला रुधिरा तथ्य चापरे जैसे व्याप्तम रणम सर्वम तत्प्रमाण महाबल। तब वीर कुछ ने अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके जलोकास्त्र का प्रयोग किया, फिर तो वे सभी नील उस अस्त्र से घायल होकर भूतल पर गिर पड़े और वह वास्तविक नील भी धराशायी हो गया। तब दूसरे सैनिक भाग खड़े हुए, उस समय वहाँ उन सैनिकों में से कोई भी ठहर नहीं सका, अकेले श्री राम ही खड़े रह गए। तावत कुसेन वीरेण बुद्ध्यासम विचारितम जलोकास्त्रेण ते सर्वे विद्या पे तुर्धरा कले पति तो नीला परे भगनाथ सैनिका एक तो रामो नाभवन सैनिका सती। अब श्री राम काल अग्नि के समान भयंकर और प्रकाशमान तीखे बाणों की वर्षा करने लगे, परंतु वे बाण जैसे कंजूस के घर पर याचना करने वाले गरीब के मनोरथ व्यर्थ जाते हैं उसी प्रकार निष्फल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कितना अच्छा उदाहरण दिया है, कंजूस के घर में अगर मांगो कुछ है तो बेकार होता है। उसी प्रकार से वो बाण राम के जो बाण थे बड़े तीखे थे, लेकिन जमीन में गिर गए, कुछ फायदा नहीं हुआ। राम मो जनाराचन तीक्षण काला नल प्रभान मार्गणान फलापे तो कृपण से वे मंदिर मनोरथा निर्धन शरण मेघा एवं बरे। श्री राम रण क्षेत्र में क्रुद्ध होकर जिस जिस बाण को छोड़ते थे उसको वे दोनों काट कर दो टुकड़े कर देते थे। इस प्रकार वह एक ही बाण चार भागों में बढ़ जाता था। उस समय संसार को विस्मित कर देने वाला ऐसा ही युद्ध हुआ था। अच्छा, दो टुकड़े एक करता और दूसरा दो टुकड़े करता, तो एक बाण के चार टुकड़े करते हैं दोनों के दोनों। यम यम बाणम ममोचा सो राघव कुपितो मृदे तम तम युधा चक्र पुस्तौ चतुर्धा भवच्छन एवं तदा भवन युद्धम लोके विस्मय कारकम। बाणों से अत्यंत घायल हुए राम को जब ये निश्चय हो गया कि इन दोनों बालकों में से एक बालकों में एक का बल है, तब वे सीता के मुख के समान शोभाशाली उनके मुख की ओर देखते हुए मूर्छित होकर रथ की बैठक में गिर पड़े। दृष्टातुल्यम बलम सम्यंग बालयो रघुनंदन सीता बदन वद्वक्त्र दृष्टा बाण सुताड़िता पपात रथनी रेथ मूर्छितो जन में जय। तब जानकी पति श्री राम को मूर्छित जानकर कुश और लव ने उन्हें उस रथ से उतार कर उनके दोनों कुंडल बाजूबंद और कंठ हार उतार लिए और लक्ष्मण के भी आभूषण ले लिए। तथा कुछ लव ज्ञातवा मूर्छितम जानकी पति समुत्तीर्य रथान तस्मान जगृहते कुंडले केयूरम कंठहारम चा लक्ष्मण ख्याति मंडलम। इसी प्रकार उन्होंने युद्ध भूमि में पड़े हुए सभी वीरों के आभूषण उतार लिए। इसी बीच में लव ने कुछ से कहा सर्वे काम अपि वीराणाम पतिता नाम जनांगणे एतस्मिन्नन्तरे राजन् नमः कुशम अथाब्रवीम। भैया कुछ, मैं इस महाबली हनुमान को पकड़कर ले चलूंगा, इस बंदर को देखकर अवश्य माता सीता प्रसन्न होंगी।
भ्राता कुछ गृहीष्यामि हनुमन्तं महाबलं सीता विक्षेपं हृष्टा भविष्यति न संशयम्।
आप श्री राम के इस कठिनता से जीते जाने वाले एवं रमणीय रथ पर सवार होइए और मैं लक्ष्मण के सुंदर रथ पर चढ़कर चलता हूँ। कौन कह रहा है? लव कह रहा है, कुछ से कह रहा है। तो लव क्या कहता है कि राम के रथ पर मैं चढ़ता हूँ और लक्ष्मण के रथ पर नहीं, राम के रथ पर आप सवार होइए और मैं लक्ष्मण के रथ पर। तो कुछ बड़ा है तो लव कहता है अपने बड़े भाई कुछ से कि राम के रथ पर आप चढ़िए और मैं लक्ष्मण के सुंदर रथ पर चलता हूँ। जैसे राम बड़े भाई हैं, लक्ष्मण छोटे हैं, तो छोटा भाई लव कह रहा है कुछ से कि आप राम के रथ पर चढ़िए और मैं लक्ष्मण के रथ पर चलता हूँ। आप इन जाम बाण आदि प्रधान प्रधान वीरों को अपने रथ पर डाल लो।
राम चारथम रम्यम अध्यारोह सुदुर्जयम लक्ष्मण से रथम रम्यम अध्यम जामवत प्रमुखान वीरान सुरथे परिपात।
उस समय रणभूमि में हनुमान और जामवान की मूर्छा दूर हो चुकी थी। तब ये दोनों वानर वीर परस्पर कहने लगे ठीक ही तो है, अब हम लोग यहाँ अपने नेत्र मूंद लें। हनुमान और जामवान दोनों अब रथ में डाल दिया, लेकिन उनको तो अब होश है, लेकिन अब सोच रहे हैं कि अच्छा यही है कि अब नेत्र मूंदे रहे।
हनुमान जाम बवंतौचाम मूर्छा विरहे तो भूमि वानरा चतुस्तथ्यम नीले या गोत्र लोचने।
अब हनुमान जी क्या कहते हैं, जामवान हे जामवान देखो ना, इन बालकों के बाणों की चोट से श्री राम आदि वीर मूर्छित हुए पड़े हैं। श्री राम से उत्पन्न हुए इस शिशु ने मुझे भी बेहोश कर दिया था, परंतु अब क्या करूं, यदि कहीं वह पुष्प मुझे बलपूर्वक पकड़कर सीता जी के समीप ले गया तो निसंदेह मेरा मरण हो जाएगा। क्यों मरण हो जाएगा?
हाँ,
क्योंकि हनुमान जी सीता जी का ऐसा हाल नहीं देख सकते हैं कि जंगल में रह रहे हैं, उनके पति राम
अयोध्या के राजा हैं और राम की पत्नी सीता जो है जंगल में इतना कष्ट भोग रही हैं, तो हनुमान जी जाम माम से कहते हैं कि अगर मैं सीता जी को ऐसा देखूंगा तो मैं मर जाऊंगा। पश्च राम आ गयो वी राम मूर्छिता बाल सायके जाम वन माम चकुरुते मूर्छितम राम संभव किम करिष्यामि यदि माम समेष्यति बलात् कुशाम सीता समीपम मरणम भविष्यति न संशयः। वीरवर हनुमान ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय रणभूमि में घूमता हुआ लव वहाँ आ पहुँचा और बड़ी प्रसन्नता के साथ उसने कपट पूर्वक मूर्छित हुए उन दोनों मानवों को पकड़ लिया। हनुमान और कौन जानवान दोनों कपट पूर्वक मूर्छित हुए थे। एवं ब्रह्माणे वीरे तुम तातो रण गतो लवान जग्राह वानर तोहिं मुदा कपट मूर्छिता। अब ये दोनों सीता जी के निकट जाकर युद्ध के सारे वृत्तांत का वर्णन करने लगे। क्या कहते हैं, हे माँ हमने सेना सहित श्री राम को जीत लिया है और उनके आभूषण भी उतार लिए हैं तथा तुम्हें तमाशा दिखाने के लिए मैं दो बंदरों को भी पकड़ लाया हूँ। चलो देखो ना भाई कुछ ने घोर युद्ध किया था। कौन कह रहा है?
लव
कह रहा है। और अभी विजयी होकर पुनः लौटे हैं। तब सीता पुत्रों को छाती से लगाकर निम्नांकित वचन बोली। सीता समीपम गत्वाथ सर्वम जगत गतुश्चतो जितु रामः ससैन्यो हि समानीतम च भूषणम मान रहम कौतुकार्थम ते मयानीतो निरीक्षयन् मातर भ्रात्रा कृतम युद्धम विजयी पुनरागतम सीता पुत्रो परिस्वज्यं वचनम चेदम अब्रवीन। अब सीता क्या बोली, अरे बेटा तुम इन दोनों सम्मानित मानवों को रणभूमि में ही छोड़ा, नहीं तो ये दोनों मुझे देखकर निर्जीव होकर मर जाएंगे। तो सीता जी क्या कह रहे हैं, जानते हैं सीता जी ये देख नहीं पाएंगे। इसका मतलब हनुमान और जामवान कितना प्रेम करते थे सीता से कि देख नहीं सकते। तब महाबुद्धिमान लव ने उन दोनों को रण क्षेत्र में लाकर छोड़ दिया। मान नाम वानर मुंचे रण मध्य पुत्र माम निरीक्षता देता जीवहीन भविष्य तथो लघो ममो चेता रण मध्य महामति। इसी बीच में महातेजस्वी महर्षि वाल्मीकि ऋषियों के साथ वर्ण लोक से लौट कर आ गए। जैसे क्या पता चलता है कि जो युद्ध हुआ है इस कारण से क्योंकि वाल्मीकि जी नहीं थे अपने आश्रम में। अगर वाल्मीकि जी आश्रम में होते तो ये सब युद्ध नहीं होता। तो वाल्मीकि जी अब वरुण लोक से लौट करके आए। ये तस्मिन्नंतरे राजन वाल्मीकि वरुणालया आजगाम महातेजम ऋषि परिवारिता। तब कुछ और लव ने महर्षि के समीप जाकर सारा दृष्टांत जो का त्यों उनसे कह सुनाया। सारी घटना जानकर मुनिवर वाल्मीकि ने अमृत में जल से सींच कर उन समस्त मरे हुए योद्धाओं को उठाया और फिर रघुनंदन से इस प्रकार कहा। तो वाल्मीकि जी ने क्या किया, असंख्य जो योद्धा मारे गए थे सबको जिंदा कर दिया वाल्मीकि जी ने। कितना आश्चर्य है। और अब वाल्मीकि जी राम से क्या कहते हैं, तो गत्वा था कथयताम सर्वं कृत्यम अशेषताम ततो ज्ञात्वा मुनिवरां सर्वानुत्थाप्य वारिणां तो क्षाम्रतमये नैवम उवाच रघुनंदनम। वाल्मीकि जी कहते हैं, महाराज ये दोनों आपके पुत्र हैं। बिल्कुल पुत्र सिद्ध कर दिया आपके पुत्र हैं। आज सबको हरा दिया आपके, और इससे बढ़कर और क्या प्रमाण है कि आपके पुत्र हैं। जैसे शेर का पुत्र शेर होता है। रघुनंदन इन्हें ग्रहण कीजिए और यदि आप सीता को निर्दोष मानते हो तो उसे भी ले जा सकते हैं। वाल्मीकि जी की कितनी विनम्रता है, कितने स्थिरता से बोल रहे हैं। राम के ऊपर कोई मतलब विवस नहीं कर रहे हैं राम को। तब पुत्र महाराज गृहताम रघुनंदन मन से यदि सीताम चाम निर्दोषाम ने तुमरहते। श्री राम जिसमें विमुग्ध होकर उठकर वहां से चल दिए। राम विस्मित हो गए हैं और उसके चल दिए, मतलब ये दिखा रहे हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत मतलब दुखी नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति बहुत शर्मिंदा होता है, तो राम जैसे बहुत शर्मिंदा है, लज्जित है, क्योंकि सीता का त्याग किया है इसलिए भी लज्जित है, और लव कुश के द्वारा पराजित हुए इसलिए भी लज्जित है, पूरी सेना हारी है, तो लज्जित जैसे और विस्मित होकर के वो चल दिए और सैनिकों से अपनी नगरी में प्रविष्ट हुए। इधर तेज वीर महर्षि वाल्मीकि द्वारा बंधन मुक्त किए गए, उस अस्त्र की रक्षा करने लगे। तेज वीर महर्षि वाल्मीकि द्वारा बंधन मुक्त किए गए उस अस्त्र, अच्छा वाल्मीकि जी ने उस अस्त्र को बंधन मुक्त कर दिया, इन्होंने तो बांधा था, अब वाल्मीकि जी छोड़ते हैं घोड़े को तो कोई विरोध नहीं कर सकता। तत्पश्चात श्री राम ने उस महान यज्ञ को संपन्न किया। उत्थाय रामो नगरी प्रवेश मुक्तम वाल्मीकि नाचतम पालया मास वीर पश्चात यज्ञो महान कृतम। जिस समय वह यज्ञ शुरू हुआ उसी समय मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि ने पुत्रों सहित सीता को लाकर रघुनाथ जी के समीप खड़े कर दिया। तो अब सोने की सीता की जरूरत नहीं है, तो वाल्मीकि जी ने तुरंत ही अच्छा अवसर था, जिस समय यज्ञ शुरू हुआ चलो यज्ञ करो, बैठाओ इनको सीता जी को, साक्षात सीता है तो सोने की सीता की क्या आवश्यकता है। यज्ञोत्सव वर्तमान वाल्मीकि मुनि पुंगवान सीता नीतवा पुत्र युताम संस्थाप्य रघु सन्निधो। इसका मतलब ये है, जब वाल्मीकि जी ने राम से कहा था कि अगर आप सीता को निर्दोष मानते हो तो उसे ले जा सकते हैं, तो राम विस्मित हो गए। इसका मतलब है मौनम स्वीकृति लक्षणम, कि राम ने कुछ उत्तर नहीं दिया, इसका मतलब स्वीकार है। तो वाल्मीकि जी उनके सारे को समझ गए, तो वाल्मीकि जी ले आए, लेकिन अपनी लज्जा के कारण राम ये कह नहीं सकते हैं कि मैं सीता को स्वीकार कर रहा हूँ। तब श्री राम पुत्रों से संयुक्त हुए और सीता के साथ विराजमान होकर उन्होंने यज्ञ के अंत में मुनियों को दक्षिणा आदि से पुरस्कृत करके विदा किया। तो सीता के साथ विराजमान होकर के और पुत्रों के साथ उन्होंने यज्ञ किया। राम पुत्र ये तो जाता सीतया सहिता सीता मुनि सर्जया मासन यज्ञान्ते पुरस्कृतम। श्री राम का जैसा स्नेह सीता के प्रति था, वैसा ही प्रेम वे दोनों पुत्रों से करने लगे। राम सीता गतम स्नेहम विदधे तद पत्यो युद्धम तो पुत्र जातम रामेण वैपुरम तथा पार्थ पुत्र युद्धम प्रवर्तताभुतम। सूत जी कहते हैं मुनि श्रेष्ठ महर्षि जैमिनी ने परीक्षित के पुत्र जन्मेजय से जिस कथा का वर्णन किया था वही सारा का सारा वृत्तांत मैंने आप लोगों से कह सुनाया है। इसका मतलब क्या है कि सूत जी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं ये कथा, और ये कथा पहले महर्षि जैमिनी ने किसको सुनाई, जन्मेजय परीक्षित के जो पुत्र हैं उनसे सुनाई है। पारीक्षिताए सकलम कथिया मास जैमिनी सत्यम आख्यातम मया वै मुनि पुंगवान। वाल्मीकि मुनि ने अपनी रामायण में पिता पुत्र के युद्ध का वर्णन नहीं किया है, यदि वे इसका वर्णन करते तो यह संसार कर्मा के समुद्र में डूब जाता। नाख्यातवान इदम युद्धम वाल्मीकि पितृपुत्रयो यद्याख्यातम अदम जिस्यन लोकोयम करुणार्णवे। तो यहाँ पर ये सूत जी क्या कह रहे हैं कि वाल्मीकि मुनि ने इस बात को क्यों नहीं अपनी रामायण में लिखा, क्योंकि ये बड़ी ही करुणा की बात थी कि जो लव कुश जो है राम से युद्ध कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा कारण ये भी है कि ये ग्रंथ बहुत बड़ा हो गया होता, पहले से ही वाल्मीकि जी की रामायण में कितने श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं, तो फिर 24,000 भी कम नहीं है, और अगर ग्रंथ और ज्यादा बड़ा हो जाता है तो लोग फिर पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए वाल्मीकि मुनि ने इस घटना का वर्णन नहीं किया है। अब सूत गोस्वामी कहते हैं जो नरश्रेष्ठ इस मनोहर कथा का श्रवण करते हैं वे संसार में पुत्र पुत्रों से संपन्न होकर मनोरम भोगों का भोग करते हैं और अंत में समस्त पापों से छूट कर अविनाशी विष्णु पद को प्राप्त हो जाते हैं। इदम आख्यानकम रम्यम ये श्रृणवंती नरोत्तम ते पुत्र पौत्र संहिता भुक्त्वा भोगान मनोरमान सर्व पाप विनिर्मुक्ता लभन्ते विष्णु अव्ययम्। जो मनुष्य इस उत्तम इतिहास को स्वयं सुनता है अथवा किसी पुण्यात्मा को सुनाता है उसे राजसी और अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। श्रोतीदम पुण्यशीलम श्रावे चेदम उत्तम नरफलम अवाप नोती राजसूयाश्वमेधयो। जो नरश्रेष्ठ स्वर्ण निर्मित विमान में बैठकर अच्छा वह नरश्रेष्ठ स्वर्ण निर्मित विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में जाता है और पुनः सुंदर रूप था लक्ष्मी से संयुक्त होकर किसी निर्मल कुल में जन्म ग्रहण करता है। कांचन विमान स्वर्गम याति नरोत्तम पुनर्लक्ष्मी रूप जितो जायते विमले कुले। जैसे कोकिल की मीठी बोली सुनने के बाद कौवे की रूखी काव काव ये अच्छी नहीं लगती उसी तरह इस कथा के सुन लेने पर दूसरी कथा सुनने की रुचि नहीं होती। सुस्वादम उपाख्यानम श्राव्यम नरोचते उसको किलरुतम सुस्वा रुक्षाधाम सत्य भाग्य। ये अंतिम श्लोक था और बड़ा सुंदर। इसमें क्या बताया गया है कि कोयल की मीठी बोली सुनने के बाद फिर कौवे की जो है काम को अच्छी लगती उसी प्रकार ये कथा इतनी सुंदर है इसको सुनने के बाद दूसरी कथाएं अच्छी नहीं लगती है। किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूँ? हाँ, तो इनका प्रश्न है कि जब लव और कुश हनुमान और जामवान को सीता जी के पास ले जा रहे हैं और वे तो होश में है वे तो बेहोश नहीं है तो फिर वे क्यों जा रहे हैं? तो इसका उत्तर यही है कि जब वे पराजित हो चुके पहले लव कुश से तो ये इस प्रकार का नियम था उस समय कि अगर कोई व्यक्ति किसी से पराजित हो जाए तो फिर वो जीवन भर के लिए पूर्ण समर्पित हो जाता था और जामवान हनुमान इसी भाव से ये विरोध नहीं कर रहे हैं और लव कुश उनको जिस स्थान में ले जाना चाहे उस स्थान में वो जा रहे हैं। जैसे कंस का भी वर्णन आता है कि जिन असुरों को उसने हराया था तो वे हमेशा के लिए उसके पूर्ण समर्पित हो गए। तो इतना सत्य था प्राचीन काल में कि फिर कभी भी धोखेबाजी नहीं। लेकिन आजकल क्या है कि जब कोई किसी के सामने पिस्तौल छानता है तो वो समर्पित हो जाता है लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वो गोली मार देता है उसको। तो ये कलयुग है ऐसे में तो झूठ और धोखेबाजी हमेशा चलती रहती है लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न ये भी है कि वे ये भी समझ रहे थे कि वास्तव में जो लव कुश हैं जिनसे वे हारे हैं तो वास्तव में वो श्री राम से ही पराजित हुए हैं क्योंकि ये श्री राम के ही पुत्र हैं। फिर दूसरा प्रश्न ये है कि जब ये राम के सेवक हैं हनुमान और जामवान और राम जो भी कारण हो अगर सीता के पास नहीं जा रहे हैं सीता को नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो राम के सेवक होने के नाते वे सीता के पास क्यों जा रहे हैं? तो इसका उत्तर यही है कि ना तो स्वामी और ना ही सेवक अपने आप कोई कदम उठा रहे हैं और तो लीला जैसी चल रही है वैसा ही वे अनुसरण कर रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि राम को तो पता था कि सब लीला चल रही है अगर इस तरह से हम मान लें कि राम को सब पता है और ये सब जो है ना मतलब वैसे ही केवल खेल कर रहे हैं तो फिर लीला का रसास्वादन हम नहीं कर सकते। तो भगवान की लीला में जैसे आश्चर्य रस है भयानक रस है ऐसे कई प्रकार के रस हैं करुण रस हैं ये सब कैसे आएंगे? जैसे भगवान अपने को मनुष्य समझ रहे हैं मनुष्य भाव में इन सब रसों का आस्वादन कर रहे हैं तो हम लोग भी जब भगवान के इसी प्रकार के भाव में जब श्रवण करते हैं भगवान की लीला का तो हम रसास्वादन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए भगवान ने शिवजी का धनुष तोड़ा तो ये बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य के साथ इसका वर्णन किया जाता है। परंतु अगर हम ये सोचें कि भगवान तो असीम, भगवान तो असीम शक्ति है, तो शिव जी का धनुष छोड़ना कोई कौन से आश्चर्य की बात है, इससे फिर कथा का रस नहीं मिलता। तो हमें देखना होता है कि नहीं, भगवान यद्यपि परमेश्वर है, अभी वो साधारण मनुष्यों के बीच में है और कैसी कैसी स्थितियों में कैसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं, फिर एक असाधारण जो उन्होंने कार्य किया है, तो एक विशेष घटना है। हम जब ये सोचते हैं तो हमें कथा का रस प्राप्त होता है। अब एक विशेष बात जो हमें समझना है वो ये है कि इस जननी महाभारत में जो हमने पढ़ के सुनाया है, इसमें ये बताया गया है कि सीता जी राम के पास वापस आ गए, वाल्मीकि मुनि सीता जी को लाए, उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्रों को स्वीकार कर लिया। जबकि वाल्मीकि रामायण में क्या वर्णन है आप जानते हैं कि सीता जी पृथ्वी में समा गई, राम को नहीं प्राप्त हुई। तो इसमें जो है एक विशेष आनंददायक जो घटना है, तो ये जो है ना इस ग्रंथ की विशेषता है। अब ये कोई प्रश्न करे कि सीता जी अगर राम के पास वापस आ गई तो फिर पृथ्वी में कैसे समाई, अब इन दोनों बातों को कैसे समझा जाए, एक दूसरे के विरोधी है। अगर ऐसी बात है तो हम इन दोनों घटनाओं को मिला करके और एक जो है पूरी जो घटना है वो बना सकते हैं। वो कैसे कि सीता जी राम के पास वापस भी आ गई और आगे चल करके फिर कभी प्रश्न उठा होगा और सीता जी ने अपनी परीक्षा देने के लिए ऐसा भी किया तो पृथ्वी में ही समा गई। धन्यवाद।